أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مباركة حاقة آيات نمبر 13 سے آيات نمبر 34 1313 سے 34 تک. اب قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا. اب یہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، اس سے پہلے یہ باتیں ڈسکشن میں آ چکی ہیں سورہ زمر اور دیگر آیتوں کے ذیل میں، کہ جو سور ہے وہ ایک طرح سے بغل ہے، ایک طرح سے اناؤنسمنٹ ہے، ایک طرح سے اعلان ہے، جس طریقے سے سپاہیوں کو انفارم کرنے کے لیے کہ آرام کا وقت ہو گیا ہے، سب اپنی اپنی آرام گاہ میں چلے جائیں، بغل بجایا جاتا ہے اور سارے کے سارے سمجھ جاتے ہیں کہ اب موومنٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنی آرام گاہ کی طرف چلے جاتے ہیں. اور پھر جب مارننگ میں ان کو ویک اپ کال دینی ہوتی ہے کہ اب اٹھنے کا وقت ہو گیا، تو پھر بغل بجایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کو انفارم کیا جاتا ہے کہ اب آرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، میدان میں آنے کا وقت ہے، تو وہ میدان میں آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کسی بھی اچھے اسکول میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی اسی طریقے سے بیل بجتی ہے اور اس کے ذریعے سے مختلف میسیجز اسٹوڈنٹس تک پہنچا دیے جاتے ہیں کہ مثلا یہ ریسس کی بیل ہے، یا اسی طریقے سے یہ کلاسز کے اندر جانے کی بیل ہے، یا چھٹی کی یہ بیل ہے. اسی طریقے سے اس دنیا کے خاتمے کی بھی ایک بیل یا بغل آپ سمجھ لیجئے، جس کو نفخ سور سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ جب وہ سور پھونک دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملات ختم ہو گئے زمین کے. اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا سور ہے کہ جس کے نتیجے میں سارے افراد واپس سے زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع کر دیے جائیں گے. تو آگے جو باتیں آ رہی ہیں ان میں سے کچھ پہلے سور سے متعلق ہیں کہ جس کے ساتھ ہی خاتمہ ہو جائے گا، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق دوسرے سور کے ساتھ ہے. پروردگار فرماتا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن ہو جائے گی وہ بات جو ہونے والی ہے. یہ وہی لفظ واقعہ جب قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اب جو یہاں پر کہا گیا کہ زمین اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یہ ایک تعبیر ہے. اور وہ دوسری تعبیر کہ جس کے مطابق پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، منتشر کر دیا جائے گا، اور وہ ہوا ہو جائیں گے اور پوری زمین پھر اس کے نتیجے میں ایک ہو جائے گی، جس کی تعبیر ہم سورہ طٰہٰ کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ قا ان صف صفا لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، کہ بالکل زمین جو ہے چٹیل بیابان ہوگی جس میں کہیں کوئی کجی نہیں ہوگی اور کوئی بلندی دکھائی نہیں دے گی، یعنی بالکل اسٹریٹ فلیٹ میدان. پروردگار فرماتا ہے، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وہ دن کے جب وہ واقع ہونے والی بات واقع ہو جائے گی. یہ زمین کا معاملہ ہوگا. اب آسمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان شق ہو جائے گا، یعنی جو آسمان پر ہیونلی باڈیز ہمیں نظر آتی ہیں یہ بھی گویا ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیں گی، سب کچھ کولیپس ہو رہا ہوگا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ، اور یہ بالکل ہی سست پڑ جائے گا اس کا نظام، اور ظاہر ہے کہ یہ خاتمے کی طرف معاملہ جا رہا ہوگا. والملک علی ارجائها، اور جو فرشتے ہیں وہ اس کے اطراف میں ہوں گے، یعنی ظاہر ہے کہ فرشتے بہت سے مقامات پر ہیں، آسمانوں کے اندر بھی عبادت کر رہے ہیں جہاں پروردگار عالم نے ان کو پلیس کیا ہے. لیکن جب یہ تمام تر چیزیں ختم ہو رہی ہوں گی، تو ایک تو وہ وقت ہے کہ جس کے بعد فرشتوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ دوسرے سور کے موقع پر پھر فرشتے جو ہے وہ اطراف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں، کہ جو پروردگار عالم کے حکم کے منتظر ہوں، جیسا کہ بعض احکام کا تذکرہ آگے آئے گا بھی. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تمہارے رب کے عرش کو سنبھالے ہوئے ہوں گے ان کے اوپر، یعنی بظاہر ان فرشتوں کے بھی اوپر، ثمانیہ آٹھ. اب یہ آٹھ کون ہیں، ان کا کوئی تذکرہ یہاں پر نہیں ہے. بعض روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ اس وقت عرش پروردگار کو تھامنے والے چار فرشتے ہیں، اور جب قیامت کا میدان ہوگا تو عرش پروردگار کو تھامنے والے آٹھ فرشتے ہوں گے، یعنی مزید جاہو جلال جو عرش کا ہے، پروردگار عالم کی شان و شوکت کو بتانے کے لیے سمبولیکلی عرش کو اس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہاں پر مزید فرشتے ہوں گے. پھر بعض علماء کے مطابق آٹھ صفے ہوں گی فرشتوں کی، ایسا نہیں کہ آٹھ انڈیویجل فرشتے ہوں، بلکہ آٹھ صفے ہوں گی فرشتوں کی. اور پھر اس کے اندر بعض روایتوں کے اندر اس طرح سے بھی آیا ہے کہ ان آٹھ کے اندر चार ऐसे भी होंगे कि जो माजी के मुंतखब अफराद होंगे, और चार वो होंगे कि जो इस उम्मत के मुंतखब अफराद होंगे। माजी के चार अम्बिया और इस उम्मत में से सैयदुल अम्बिया सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहि सलाम, इमाम हसन अलैहि सलाम और इमाम हुसैन अलैहि सलाम का, ये वो अफराद होंगे। तो ये अर्श की वसअत को भी बताता है और समझाता है। बहरहाल ये मुतशाबिहात में से इतना हमें समझ में आता है कि अर्श परवरदिगार एक हकीकत है, मगर अर्श उस तख्त के माने में नहीं है कि जिस तरीके से इस दुनिया के अंदर होता है कि तख्त हो तो उसके ऊपर कोई बैठा हुआ भी है, तो परवरदिगार आलम भी माजल्ला उस अर्श के ऊपर बैठा हुआ हो ना। परवरदिगार जिस्मो जिस्मानियत से मावरा है, परवरदिगार आलम जिस्मो जिस्मानियत का खालिक है, उसके बाद में यह तस्वर भी गुस्ताखी है। लिहाजा ये तो मुराद कतअ नहीं है। हाँ, अर्श यकीनन तदबीर कायनात के एक मरकज का नाम तो है, यानी ये तो समझाया गया है, बास तफासिर के अंदर आई भी है वजाहत कि जो सारी तदबीरात होती हैं उसका जो मरकज अगर आप कहें तो वो अर्श को कहा गया है। लेकिन जिस तरह से दुनिया के अंदर खाने काबा, जमीन के ऊपर खाने काबा, उसकी एक मरकजियत है, ऐसा नहीं है कि परवरदिगार उसके अंदर रहता है, वरना वो भी बैतुल्ला कहलाता है, लेकिन खुदा उसके अंदर रहता नहीं है। उसी तरह से अर्श तख्त का नाम है, लेकिन ये कि वो तख्त ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर खुदा बैठता है। ये सारे जिस्मानी तकाजे हैं, खुदा इनसे बुलंदतर है। यौम एजिन तो रजूना, उस दिन तुम सबकी पेशी होगी, यानी तुम सबको पेश किया जाएगा। ला तख्वा मिनकुम खाफिया, और तुम्हारी कोई बात छुपी ना रहेगी, यानी जो तुम्हारा आमाल नामा है वो जाहिर कर दिया जाएगा, तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाएगा। वो अम्मा मन ऊतिया किताब हू बे यमीन है, अब वो जो उस पेशी का नतीजा है उसको बयान किया जा रहा है कि ब्रॉड कैटेगरीज दो बनेंगी, वो कि जिनके दाएं हाथ में राइट हैंड में उनका आमाल नामा दिया जाएगा। तो यकूल हो तो वो कहेंगे हाँ उमुकरऊ किताबिया, कि भाई जरा ये देखो मेरी किताब, ये मेरा नामा आमाल, ये मेरी फाइल जो मुझे दी गई है, जरा देखो और इसको पढ़ो। इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मैं खूब जानता था कि मुझे हिसाब देना है, यानी दुनिया के अंदर मैं इस बात की तरफ मुतवज्जे था कि ये दुनिया की जिंदगी ऐश और इशरत के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसका मुझे हिसाब देना है। वह हुआ फिर ईशत राजिया, तो वो वहां पर उस जिंदगी में होगा कि जो ऐश इशरत वाली होगी, जो उसकी पसंदीदा होगी। फिर जन्नतिन आलिया, बुलंद मंजिल बहिश्तों के अंदर उसको अकोमोडेट किया जाएगा। कुतुफुहा दानिया, जहां पर तैयार फल उसके नजदीक होंगे, जिसको बिल्कुल लटके हुए, जिसको वो जब चाहे तोड़ सकता है, उनसे इस्तिफादा कर सकता है। कुलू वशरबू हनीयन, खाओ पियो खुशगवारी के साथ, मजे के साथ। बेमा असलफ तुम फिल अय्यामिल खालिया, ये उन कामों की बदौलत है कि जो तुम गुजरे हुए अय्याम के अंदर किया करते थे, यानी तुम्हारे उन नेक अमाल को कतअ नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी तुम्हें यहाँ पर जजा दी जा रही है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बयान की गई, बाज़ रिवायात के अंदर आई है कि जाहिर है कि इन साहिबान ईमान जिनकी तस्करा यहाँ पर किया जा रहा है कि इनके दाएं हाथ में नामा आमाल दिया गया है, तो क्या इनके दाएं हाथ में दिए गए नामा आमाल में कोई गुना नहीं होगा, यानी ये बिल्कुल मासूम थे? तो हम जानते हैं कि नहीं, मासूम तो सब नहीं थे। तो फिर ये क्या रीज़न है कि इनके दाएं हाथ में जब नामा आमाल दिया गया तो उन्होंने पढ़ा भी नहीं, बल्कि फौरन ही दूसरों के सामने ले जाकर पेश कर दिया, खुशी खुशी ऐलान कर दिया, सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि तुम जरा देखो मेरे इस नामा अमाल को। तो इसके बारे में बाज़ रिवायात के अंदर आया है कि बहुत सारे मोमिनीन ऐसे हैं कि जिनके दाएं हाथ में आमाल नामा देने से पहले परवरदिगार आलम उनके जो गुनाह होंगे उनका इकरार उनसे करवाएगा, और फिर उसके बाद परवरदिगार आलम कहेगा कि मैंने दुनिया में भी तुम्हारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाले रखा है और यहाँ पर भी तुमको मैं माफ़ करता हूँ। अब जाहिर है कि ये वो अफराद हैं कि जिनका ईमान खालिस है और जिनके ईमान के बाद आमाल सालिहा भी बहुत ज़्यादा हैं। अब ये परवरदिगार आलम का लुत्फ़ करम है कि वो उनके गुनाहों से दरगुजर करता है, नज़रअंदाज करता है। तो परवरदिगार फरमाएगा कि मैंने दुनिया में भी तुम्हारे गुनाहों के ऊपर पर्दा रखा था और यहाँ कयामत में भी तुम्हारे गुनाहों के ऊपर पर्दा ही रखूंगा। तो फिर जाहिर है कि उनको जब नामा अमल दिया जाएगा तो वो पूरे तरह से मुतमईन होंगे कि ये हमारी कामयाबी का ऐलान है। अब इनके मुकाबले में एक साइमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट, वह अम्मा मन ऊतिया किताब अहू बशिमाल, और वो कि जिनके बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में नामा अमल दिया जाएगा, अब वो पछताएगा। फयकूलो, वो कहेगा या लई तनी लम ऊता किताबिया, काश ये मेरा नामा अमाल मुझे ना दिया गया होता, ये फाइल मुझे ना पकड़ाई गई होती। वो लम अदरे मा हिसाबिया, और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। एक और मतलब ये किया गया कि मैंने इस बात को नहीं जाना था दुनिया में कि हिसाब किताब भी होगा, यानी जिस तरीके से जिनका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया गया था, राइट हैंडेड जो अफराद हैं उन्होंने ये कहा था कि मुझे इस बात का खूब अंदाजा था, मुझे पता था कि मुझे हिसाब देना होगा, तो ये इस बात पर पछता रहे हैं कि मैंने तो इस बात को जाना ही नहीं दुनिया के अंदर के कभी हिसाब किताब की मंजिल भी आएगी। या लैतहा कानत अलकाज़िया, या काश के उसी के साथ इख्तिताम हो जाता, यानी ये जो मौत आ गई थी उसी के साथ इख्तिताम हो जाता, मौत के बाद ये हशर सामानी ना होती, ये मैदान कयामत का की जिल्लत ना होती। माँ अगना अन्नी मालिया, ना मेरा माल मेरे काम आया, हलक अन्नी सुल्तानिया, और मेरा असर और इकतदार भी मेरे काम नहीं आया, वो भी ख़त्म होकर रह गया, नाबूद होकर रह गया। अब असर और इकतदार बादशाह, उनके तो असर और इकतदार के क्या कहने, जो दुनिया के अंदर जुल्म व सितम करने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसके अलावा भी हम जानते हैं कि सोशल इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सारे अफराद का एक स्टेटस होता है, वो उसके ज़रिए से अपने काम निकलवा लेते हैं। तो क़यामत के मैदान में इनमें से कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है। एक और मतलब भी जो सुल्तानिया का किया गया, और वो है दलील और हुज्जत, कि ना मैं यहाँ पर कोई गलत बात कह सकता हूँ, ना कोई दलील दे सकता हूँ, ना कोई हुज्जत, इसलिए कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। खुजू हो फगुल्लू हो, और अब जाहिर है कि परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म आएगा फरिश्तों को कि इनको पकड़ लो, फगुल्लू हो, और इनके हाथों को गर्दन से मिलाकर जकड़ दो, सुम्मल जहीमा सल्लू हो, और फिर इनको डाल दो जहन्नम के अंदर, सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रअुहा 70 ज़िराअन फसलुकू हो, फिर उसके बाद एक ऐसी जंजीर में कि जिसकी लंबाई 70 हाथ के बराबर है, उसमें इन्हें बांध दो, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और फिर परवरदिगार आलम यहाँ पर दो इनके गुनाह जो है उनको हाईलाइट करता है कि ये दो गुना इनके थे, इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, कि ये अल्लाह पर, खुदाए अजीम पर ईमान नहीं रखता था, वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता था, यानी खाना खिलाना तो दूर की बात है, ये दूसरों को अगर खाना खिलाते हुए देखता था तो उनको भी रोकता था और कहता था कि तुम लोग गरीब हो जाओगे, तुम्हारा माल ख़त्म हो जाएगा अगर इन्हीं मिस्कीनों के ऊपर तुमने अपना माल खर्च किया। तो ये दो गुना इतने बड़े गुना हैं परवरदिगार की नज़र में कि उनकी वजह से उसे ये तारी सारी सज़ाएं मिल रही हैं, एक ईमान नहीं था और एक मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते थे। और दूसरी जो इसकी एक ताबीर है वो ये कि जब ये कहा गया कि ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, कि ये अल्लाह पर, खुदा अज़ीम पर ईमान नहीं रखते थे, तो वो तमाम ईमान इसके अंदर शामिल हो गए कि जो परवरदिगार आलम पर ईमान से मुतल्लक़ हैं और परवरदिगार आलम की तरफ से मुय्यन शुदा हस्तियों पर ईमान के हवाले से। मसलन कोई रसूल अल्लाह को नहीं मानता तो ये जाहिर है कि ऐसा ही है कि वो जो अल्लाह का इनकार करता है, इसलिए कि रसूल अल्लाह अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर नहीं है, वो खुदा ही के रसूल हैं, इसीलिए वो रसूल अल्लाह हैं। इसी तरह से वलीउल्लाह, इसी तरह से क़यामत के अकायद, ये तमाम तर चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं इस एक जुमले के अंदर, ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। और वो जो कहा गया कि वला यहुद वला तामिल मिस्किन, इसमें तमाम हुकूक उन्नास शामिल हो गए, यानी ना ये हुकूक अल्लाह की अदायगी करते थे और ना ये हुकूक उन्नास के हवाले से संजीदा थे। ये आयत नंबर 34 जिस पर यह सफ़ा मुकम्मल हुआ। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
सूरह मुबारक हाक्का आयत नंबर 35 से आयत नंबर 52, 35 से 52 तक, जिस पर सूरह हाक्का मुकम्मल होगा। और फिर अगला सूरह सूरह मारिज, उसकी इब्तदाई 4 आयतें भी इसी सफ़े पर हैं, फर्स्ट 4 वर्सेस। तो पहले सूरह हाक्का की इख्तितामी आयतें। हमारी बात यहाँ तक पहुँची थी कि परवरदिगार आलम ने दो गिरोहों का तस्करा किया, एक वो कि जिसके दाएं हाथ में, राइट हैंड में उसका नामा अमल दिया जाएगा और वो खुश खुश अपना नामा अमल दूसरों को दिखा रहा होगा। और फिर परवरदिगार आलम ने उन अफराद का जिक्र किया कि जिनका नामा अमल उनके बाएं हाथ में या उनके लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा और जाहिर है कि वो हसरत की तस्वीर बना होगा, पछता रहा होगा और उसे ये कहना शुरू कर देगा कि काश कि ये नामा अमाल मुझे ना दिया गया होता, मुझे मालूम ही ना होता कि मेरा हिसाब किताब क्या है, काश कि वो जो मौत मुझे आई थी वही फैसला कुन होती, यानी उसके बाद की कोई ज़िंदगी ना होती, ना मेरा माल मुझे काम आया, ना ही मेरा इक्तदार, मेरा असर और रसूख मुझे काम आया। और फिर परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो, जंजीरों में जकड़ लो और जहन्नम के अंदर डाल दो। और फिर उसके बाद परवरदिगार आलम ने उस जंजीर की तफसील भी बयान की। पहले कहा गया फगुल्लू हो, खुजू हो, फगुल्लू हो, यानी उसे पकड़ लो और हाथों को गर्दन से मिलाकर जकड़ दो। फिर कहा गया कि सुम्मल जहीमा सल्लू हो, उसे डाल दो जहन्नम के अंदर और एक ऐसी जंजीर के अंदर इसे गिरफ्त में ले लो कि जिसकी लंबाई 70 हाथ है। और फिर परवरदिगार आलम ने दो बड़े गुनाह उसके गिनवाए कि अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था और ये मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता था। अब इसी कंटिन्यूएशन में बात आगे बढ़ रही है कि फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, कि आज के दिन इसका कोई मददगार नहीं होगा। वला तआमुन इल्ला मिन गिसलीन, और इसके खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा सिवाय गिसलीन के। गिसलीन किसे कहते हैं? ये जो जख्मों से बहता हुआ मवाद होता है, माजल्ला, यानी इंतहाई हौलनाक और इंतहाई करीह मंजर जहन के अंदर आता है कि जो पीप बह रहा है, जो खून बह रहा है, जो जख्मों से बहता हुआ मवाद है, वही उनको खाने के लिए दिया जा रहा है। ला याकुलूहु इल्लल खातिऊन, और इसे नहीं खाना पड़ेगा मगर उन लोगों को कि जो खताकार हैं, यानी जो जानबूझकर गुनाहों के अंदर इन्वॉल्व रहते थे। ये वो हैं कि जिनको इस तरीके से परवरदिगार आलम की तरफ से खाना दिया जाएगा। फला उक्सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून, तो हरगिज नहीं, मैं कसम खाता हूँ उसकी जिसे तुम देखते हो और उसकी भी कि जिसे तुम नहीं देखते। ये एक अंदाज है तर्जुमा करने का कि ला को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए कि यानी जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, मैं कसम खाता हूँ उसकी कि जो तुम देख रहे हो, यानी जो तुम्हारे मुशाहदे के अंदर आ रहा है वो ज़ाहिर तुम्हारी ऑब्जर्वेशनल रेंज के अंदर है। तो इंसान जो कुछ देख रहा है वो तो उसे नज़र आ रहा है, आसमान नज़र आ रहा है, ज़मीन नज़र आ रहा है, ज़मीन नज़र आ रहे हैं, मगर इसी दुनिया के अंदर कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें नज़र नहीं आते। बहुत से बैक्टीरिया हैं जो हम नहीं देख पाते, जिन्नात हैं कि जिनको हम नहीं देख पाते, मलाइका हैं कि जिनको हम नहीं देख पाते, और फिर उसके बाद जो इस कायनात और गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको इंसान नेकेड आई से नहीं देख पाता, बरहन आँख से नहीं देख पाता, वो दूर के अजरामे फलकी हेवनली बॉडी जिनको देखने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत है, और जहाँ टेलीस्कोप इंसान की निगाहों को पहुंचा देता है तो फिर पता चलता है कि आगे अभी और बहुत कुछ ऐसा है कि जिसको वो नहीं देख सकता। तो उन सब को परवरदिगार आलम इंसान की मुतवज्जो, उसकी तरफ मुतवज्जे करते हुए कहता है, इन्नहू लकौलो रसूलिन करीम, कि ये कौल है एक मुअज्जज़ रसूल का, एक मुअज्जज़ पैगंबर का। अब यहाँ पर रसूल करीम से मुराद है खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्योंकि जो आगे इल्ज़ामात बयान किए जा रहे हैं कि जो आमतौर पर मुशरिकीन लगाया करते थे, शायर उनवा होने के उनवान से, काहिन होने के उनवान से, ये सब के सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए जाते थे। तो ये कराइन बहुत हेल्प करते हैं किसी लफ्ज़ के मतलब को मुय्यन करने के हवाले से। बाज़ जगहों पर रसूल से मुराद को जनाब जिब्रील को भी लिया गया है, मगर ज़ाहिर है कि हम जानते हैं कि मुशरिकीन मक्का जनाब जिब्रील को शायर या काहिन के इल्ज़ामात से मुत्तहिम नहीं करते थे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। तो ये बात दुरुस्त है अपनी जगह पर कि चूंकि पैगंबर अकरम उनके सामने बयान कर रहे थे तो एक एतबार से मजाजन ही सही, मगर इसे कौले पैगंबर कहा जा सकता है, क्योंकि जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगंबर अकरम के ऊपर नाजिल कर रहे थे, लिहाजा मजाजन उसे जनाब जिब्राइल का कौल भी कहा जा सकता है। मगर जो असल हकीकत है वो यही है कि जो आगे आ रही है कि तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, कि ये आलमीन के परवरदिगार का नाजिल करता है, ये है हकीकत। और फिर उसके बाद वो वास्ते और वसीले हैं कि जिनके जरिए से ये कलाम लोगों तक पहुंच रहा है। अब परवरदिगार आलम का जो कमेंट दरमियान में है वो गौर करने के काबिल है। परवरदिगार फरमाता है, वमा हुआ बेकौल शायर, ये किसी शायर का कौल नहीं है, कलील नम्मा तुमिनून, तुम कितना कम ईमान लाने वाले हो, यानी तुम्हें कितने कम है कि जो ईमान लाते हैं। और फिर परवरदिगार फरमाता है, वला बेकौल काहिन, ये किसी काहिन का भी कौल नहीं है, कलीलम मा तज़क्करून, तुम कितना कम नसीहत को कबूल करते हो। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये आलमीन के परवरदिगार की तरफ से नाजिल करता है, सुनाने वाला बयान करने वाला हमारा रसूल है। अब हमारे रसूल का कैरेक्टर किरदार तुम्हारे सामने है, उसका अखलाक तुम्हारे सामने है, फिर उसके बाद अगर तुम शायर कहकर उसकी बात को नज़रअंदाज कर दो, ईमान ना लाओ, तो ये काबिल अफसोस भी है, मजम्मत की बात है। यानी अगर एक शायर है वो शायरी कर रहा है तो आप आमतौर पर जुमला सुनते हैं कि भाई ये शायरी है मगर इसका हकीकत से कितना रब्त और ताल्लुक है ये कौन जानता है, उसमें चार बातें हकीकत हैं तो 10 बातें ऐसी हैं कि जो मुबालगा आ रही हैं, एग्जेजरेशन है। इसी तरह से काहिन की बात है तो काहिन तो एक क्लेम कर रहा है कि जिन्नात से उसका रब्ता है जिससे वो गैब की बहुत सारी बातें जान लेता है, कुछ ठोका ठाकी करता है यानी स्पेकुलेशन करता है और कुछ चीज़ें वो शूट कर देता है, बयान कर देता है, मगर कितनी वो बात मोतबर है। तो सही है, अगर शायर का कौल होता तो ईमान ना लाना जस्टिफाइड होता, अगर काहिन की बात होती तो उससे नसीहत का कबूल ना करना बात समझ में आती है, मगर ये तो उस रसूल का कौल है कि जो बड़ा करीम है, मुअज्जज़ है, इज्जतदार है। अब तुम्हारी तरफ से इन तोहमतों की जस्टिफिकेशन नहीं है, जबकि वो इस बात को इस्टेब्लिश भी कर रहा है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करता है बतौर मौजज़ा, खुद उसी कलाम को पेश किया जा रहा है कि तुम इसका जवाब ले आओ। अब जबकि ये सच्चा रसूल है और वो खुदाबंद मुताल की तरफ से नुमाइंदगी का शरफ लिए हुए हैं। तो वो अगर कोई गलत बात कह दे तो इसका मतलब क्या है कि खुदा का इंतखाब गलत साबित हो जाएगा, और जब खुदा का इंतखाब गलत साबित हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि परवरदिगार आलम की खुदाई जो है वो डाउटफुल हो जाएगी। लिहाजा एक फ़र्ज महाल है कि जिसको आगे बयान किया जा रहा है कि फ़र्ज़ करो वलव के साथ है कि अगर ऐसा हो जाए तकव्वला अलैना बाज़ल अखावी कि ये रसूल हमसे किसी गलत बात को मंसूब कर दे, यानी कोई बात अपनी तरफ से बना ले और हमसे मंसूब कर दे, ला अखज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम इसे पकड़ लेते, हम पकड़ लेते इसका दायां हाथ, यानी हम उसे गिरफ्त में ले लेते, सुम्मा लक़तअना मिन्हु अल-वतीन, और हम इसकी रगे हयात काट के रख देते, फमा मिनकुम मिन अहदिन अनहु हाजिज़ीन, और तुम में से कोई भी हमारे सद्दे राह न हो पाता, यानी हमारे लिए रुकावट न बन पाता, हमारे लिए बैरियर न बन पाता। यानी ये रसूल नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक माज़ल्ला 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 सुम्मा माज़ल्ला बिलफ़र्ज़ फ़र्ज़ महाल, जिस तरह से परवरदिगार कहते हैं ना कि लव काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, कि अगर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा खुदा होता तो फसाद मच जाता, दूसरा खुदा है नहीं लिहाजा फसाद मचेगा नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिलफर्ज अगर ऐसा होता तो फिर हम क्या करते। तो यानी तुम पूरी तरह से इत्मीनान रखो कि हमारा इंतखाब गलत नहीं है, जब हमने किसी को मौजजा दिया है जस्टिफाई करने के लिए उसकी रिसालत, तो ये फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इतना एतमाद होना चाहिए उसके ऊपर कि वो कोई गलत बात हमसे मंसूब नहीं करेगा। यहां तक अगर बात वाजे हो गई है तो फिर वापस पीछे की तरफ चलिए। परवरदिगार आलम ने इसीलिए अपने रसूल का तारुफ करवाया रसूलिन करीम, ये बहुत मोअज्ज़ज़ रसूल है, बहुत मोअज्ज़ज़ पैगाम रसा का कौल है, यानी ये वो है कि जिसको तुम जाहिलियत के जमाने के अंदर सादिक मानते थे, और हम अपने रसूल को जितना जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सूरह नून वल कलम के अंदर इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, खुदा गवाही दे रहा है। और फिर यहाँ पर इफ सिनेरियो के साथ ये चीज भी बयान कर दी गई। अब आप नोट कीजिए कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 बरस की जिंदगी कहीं पर इस तरह से परवरदिगार आलम ने गिरफ्त की नहीं की। ये खुद इस बात की दलील है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक लहजा, एक एक सानिया, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी जो हो सकती है वो भी परवरदिगार आलम की नजर है, उस पर मातहत निगरानी परवरदिगार हैं, और परवरदिगार आलम को इतना एतमाद है कि हमारा हबीब हमारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगा, वो जो कहेगा वो बिल्कुल हक होगा। इसको खास तौर पर ध्यान में रखिएगा ताकि सूरह मआरिज जो आगे का है उसकी पहली आयत के ज़िल में ही इस आयत से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब आगे परवरदिगार आलम ने इस एतमाद के ऐलान के बाद मज़ीद इरशाद फरमाया वह इन नहू लतज़किरा, कि ये तो यकीनन तज़किरा है, ये नसीहत है, लिलमुत्तकीन साहिबान तक़वा के लिए, जिनको फ़िक्र निजात है उनके लिए ये नसीहत है। कौन? यही जो हमारा रसूल बता रहा है सुना रहा है, जो कलाम है, ये जो कौल उसकी जबान से आ रहा है वो सब का सब नसीहत है साहिबान तकवा के लिए, फिक्र निजात रखने वालों के लिए। वह इन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकज़्ज़िबीन, और हम यकीनन जानते हैं कि तुम में वो भी हैं कि जो जुटलाने वाले हैं, यानी वो भी हैं कि जो फिक्र निजात रखने वाले हैं, तो वो जाहिर है कि नसीहत लेंगे, मगर वो भी हैं कि जो जुटलाने वाले हैं। वह इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, और ये यकीनन हसरत बन जाएगा काफिरों के लिए। जिस तरह से अभी हमने पीछे बयान किया परवरदिगार आलम ने क्या बयान किया, जो बाएं हाथ वाले हैं वो बाद में परेशान ही तो होंगे, पछतावे का शिकार तो होंगे, वो कह रहे होंगे कि काश के हमने इसके ऊपर अमल कर लिया होता, नसीहत पर अमल कर लिया होता, इससे नसीहत हासिल कर ली होती। वो जब नसीहत हासिल नहीं करेंगे तो ये झुटलाने वाले जो काफिर हैं उनके लिए हसरत बन जाएगी। वह इन्नहु लहक्कुल यकीन, और ये तो हक्कुल यकीन है, यानी इल्मुल यकीन ऐनुल यकीन से आगे का मामला है, ये कलाम खुदा का कलाम है, ये इतना मोहकम मामला है कि जो इसको पढ़ेगा वो इसकी चाशनी का एहसास करेगा, उसका दिल गवाही देगा। अगर वो ईमानदारी के साथ न्यूट्रल माइंड के साथ किसी एक तरफ फेवर भी ना करे, अगेंस्ट भी ना जाए, बिल्कुल एक न्यूट्रल माइंड के साथ पढ़े, तो ये कुरान मजीद उसे अपनी गिरफ्त में और अपनी ग्रिप में लेता चला जाएगा, मिसमराइज करेगा। मिसमराइज से मेरी मुराद ये है कि वो उसका जो एजाज का पहलू है वो उसको पूरी तरीके से महसूस करना शुरू कर देगा। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो ऐ हबीब आप तस्बीह कीजिए अपने रब के नाम की कि जो बड़ा बुजुर्ग है। यानी अब यहाँ पर खुदा की नाम की तस्बीह, यानी खुदा के बेऐब होने को बयान करना, यानी ऐ हबीब आप इनकी परवाह ना करें, जो जुटलाने वाले हैं उनके लिए हसरत बन जाएगी, जो तकवा वाले हैं वो इसे नसीहत ले लेंगे, आप अपने रब की बड़ाई बयान करते रहिए। ये बड़ाई का एक पहलू यही है कि खुदा ने जिसका इंतखाब किया है वो गलत नहीं है, परवरदिगार आलम ने जो नाजिल किया है उसमें कोई रैब और ऐब नहीं है। यहाँ पर यह सूरह हाका मुकम्मल हुआ, और फिर परवरदिगार आलम ने अगले सूरह के अंदर जो 70वां सूरह है 70th चैप्टर सूरह मआरिज, क्योंकि उसमें ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तीसरी आयत के अंदर, लिहाजा इसका नाम पड़ गया सूरह मआरिज। और ये भी मक्की सूरह है मगर इसके अंदर मदनी आयतें भी हैं, और ये कोई हैरत की बात है ही नहीं। कुरान मजीद के अंदर मक्की सूरों में मदनी आयतों का होना, मदनी सूरों के अंदर मक्की आयतों का होना, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये प्लेसमेंट है ये जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हुई है। और इस हवाले से कोई शिया सुन्नी इख्तलाफ भी नहीं है, कोई एक्सट्रीम पर चला जाए तो अलग बात है, वरना मौलाना माजदी जो है उन्होंने अपनी तफसीर के अंदर, अब्दुल माजिद दरिया आबादी ने अपनी तफसीर के अंदर भी इस हवाले से लिखा है, और दीगर उलमाए कराम ने भी लिखा है कि ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। तो ये 44 आयतों पर मुश्तमिल सूरह है, छोटा सूरह है, अलबत्ता 44 आयतें देखने में ज्यादा हैं और छोटी छोटी आयतें हैं। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सहारा अल्लाह के नाम का जो सबको फैज पहुंचाने वाला बड़ा मेहरबान है। सअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िह, एक तलब करने वाले ने तलब किया उस अजाब को जो होने ही वाला है। लिल काफिरीना लैस लहू दाफे, काफिरों के लिए उसे कोई टालने वाला नहीं है। मिनल्लाह ज़िल मआरिज, ये अल्लाह की तरफ से है जो बुलंदी के जीनों का मालिक है। अच्छा, हम जानते हैं कि ज़ाहिर है कि हर बुलंदी परवरदिगार के लिए, जितनी भी अजमतें हैं वो परवरदिगार के लिए। इंसान जितना काम करता है इबादत का वो ग़ुरबतन इलल्लाह होता है, तो गोया वो आहिस्ता आहिस्ता मानवीय एतबार से जीना बजीना तरक्की कर रहा होता है। मगर एक और भी इसका मफहूम है जो आगे आ भी रहा है कि तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैह, कि मलाइका और रूह उसी की तरफ बुलंद होते हैं। फी यौमिन, उस दिन का ना मिकदार हो 50,000 सना, कि जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर है। अच्छा, अब जाहिर है कि मलाइका का आना जाना तो लगा रहता है, परवरदिगार आलम की तरफ से मलाइका नाजिल भी होते हैं, परवरदिगार आलम की तरफ से मलाइका ऊपर बुलंद भी होते हैं। हम जानते हैं कि शब कदर के हवाले से भी आता है, तनज़्जुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र, तो मलाइका का नीचे आना और ऊपर जाना होता है। मगर एक इसका मफहूम यह लिया गया कि जब क़यामत का दिन आएगा, इसलिए कि यहाँ पे कहा जा रहा है फी यौमिन, कि उस दिन, तो इस दिन से मुराद क़यामत को लिया गया कि जब ज़मीन के सारे मामलात और आसमान के मामलात ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया को लपेट दिया जाएगा, तो फिर गोया वो मलाइका का जो अमला है वो सब के सब खुदा की बारगाह में, जो अर्श को आप मरकज समझें, कि वहाँ की तरफ सब के सब बुलंदी के ऊपर चले जाएंगे। और फिर ज़ाहिर है कि उनका भी जो मामला होगा क़यामत, तो उनको भी फेस करनी है, तो वो उनके साथ भी हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद अगला सवाल ये आता है कि जनाब ये जो 50 साल कहे गए, तो इन 50 सालों से क्या मुराद है? तो इसके हवाले से कहा गया कि कयामत का जो दिन है वो 50,000 साल के बराबर होगा। जाहिर है कि सूरज चांद तो खत्म हो चुके होंगे, मगर ये जिस तरीके से सूरज चांद की जो मूवमेंट होती है उसमें जितना अरसा लगता है वो 50,000 साल का अरसा वहां पर लग जाएगा। उसका हिसाब किताब सूरज और चांद के जरिए से नहीं होगा, लेकिन आप फर्ज कीजिए इस वक्त सूरज और चांद ना भी होते तो भी आपकी घड़ी की जो सुई है वो तो आगे बढ़ ही रही है, तो जाहिर है कि उसके जरिए से भी टाइम की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो यानी उस मकदार के बराबर वो टाइम पीरियड होगा। इसमें छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक फरमान भी है कि 50 स्टेशंस हैं, 50 मौकिफ हैं क़यामत के, और हर मौकिफ के अंदर 1,000 साल लगेंगे। अब जाहिर है कि दिल को दहला देने वाली बातें हैं कि 50,000 साल यानी एक इंतहाई तूलानी मुद्दत। अब उसके बाद एक और बहुत दिल को सुकून देने वाली हदीस है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन के लिए यह मामला इतना मुख्तसर होगा कि जैसे एक नमाज के पढ़ने में जितना वक्त लगता है बस उतना वक्त लगेगा। तो अब उसके बाद सवाल जहन के अंदर आता है कि ये कैसे होगा? ये वैसे ही होगा कि जब इंसान किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व होता है तो तूलानी मुद्दत भी हो तो उसे बहुत मुख्तसर लगती है, और अगर दिल ना लग रहा हो तो बहुत मुख्तसर वक्त भी अगर हो तो वो बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया, ये भी एक कौल बयान किया गया इस हवाले से। अब ये बातें तो हो गई, यानी यहाँ पर तो ये सफा मुकम्मल हो गया, लेकिन जाहिर है कि पीछे जो आयत हम छोड़कर आए उसके अंदर एक चीज काबिले तशरीह है कि ये जो कहा गया कि साला साइलुन बे अजाबिन वाके, के सवाल किया सवाल करने वाले ने, तो ये तो वाज तौर पर समझ में आता है कि कोई खास शान नजूल है इसका, कि जिसके अंदर किसी सवाल करने वाले ने सवाल किया है, तलब करने वाले ने तलब किया है, तो क्या उसका बैकग्राउंड था? ये वो मौका है कि जहां पर हमें तवज्जो करनी पड़ेगी। गदीर खुम का मैदान था, हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की विलायत और जानशीनी का ऐलान किया पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कहकर के अलस्तु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि क्या मैं मोमिनीन से औला नहीं हूँ, उनके नफूस से ज्यादा उनके ऊपर हक नहीं रखता। सबने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, पूरा खुतबा उसमें ये जुमला। और फिर पैगंबर अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पर बुलंद किया और कहा कि मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। अच्छा, अब उसके बाद औला कहकर मौला के मतलब की तो तशरीह पहले ही पैगंबर ने कर दी और ये भी बता दिया कि जो तुम नहीं हो वो अली है, इसलिए कि तुम्हें तो बताया जा रहा है कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उस उसके अली मौला है। अच्छा, अब ये भी बात चलिए वाजे हो गई। अब उसके बाद हुआ ये केस कि वहां पर एक शख्स ने, जिसका नाम नौमान बिन हारिस भी बताया गया, हारिस बिन नौमान भी बताया गया और इसके अलावा भी बास दीगर नाम आए हैं, उसने आकर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़े के बाद ये कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने तौहीद की बात की हमने मान ली, रिसालत की बात की हमने मान ली, नमाज का काम हमने अदा कर दी वगैरह वगैरह, अब आपने इस जवान को हमारे लिए जानशीन भी मुकर्रर कर दिया, मौला भी बना दिया, तो ये काम आपने अपनी तरफ से किया है या खुदावंद मुताल के कहने पर किया है? अब ये जुमले ही बता रहे हैं कि उसे न रिसालत की मारिफत है न रसूल अल्लाह की मारिफत है। पीछे हम पढ़कर आए हैं अभी कि परवरदिगार आलम पहले ही कह चुका है कि लौ तकव्वला अलैना बाज़ल अक़ाबील, कि अगर ये हमारे तरफ कोई भी गलत बात मंसूब करता तो हम इसे मौका ही ना देते, हम इसकी रगे जहाँ काट देते माज़ल्लाह। तो पैगम्बर अकरम ने उस मौके पर इंतहाई मतानत के साथ, अखलाक के साथ उसी बात को दोहरा दिया कि ये खुदा का हुक्म था जो मैंने तुम तक पहुँचा दिया। अब आप देखिए कि उसने सूरह अनफाल की वो आयत पढ़ दी जो ठीक है किसी और मौके पर नाजिल हुई थी, मगर उसने खुद के लिए अजाब को तलब किया ये कह करके इन काना हाजा हुवल हक मिन इंदिक फअमतिर अलैना हिजारतम मिन समाए, कि परवरदिगार अगर ये तेरी तरफ से हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा और कोई दर्दनाक अजाब ले आ। तो जिसके बाद एक पत्थर आसमान से नाजिल हुआ और वहीं पर हारिस बिन नौमान फहरी वो हलाक हो गया। उसको यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि सअला साइलुन बेअज़ाबिन वाक़े, कि सवाल करने वाले ने, तलब करने वाले ने तलब किया एक ऐसे अजाब को जो वाक़े होने वाला था, लिल काफिरीन लैस लहू दाफ़े, जो काफिरों के लिए हरगिज़ टलने वाला नहीं था। अब ये जो कहा गया तो समझ में आता है कि वो कुफ्र किए बैठा था, उसका जुमले भी बता रहे हैं, वो पैगंबर अकरम की रिसालत ही को नहीं मानता, वो अपने लिए अजाब का तलबगार हो रहा है, यानी पैगंबर अकरम के हवाले से उसका दिल कतअन मुतमइन नहीं है, तो उसके निफाक को इस मौके पर आश्कार किया गया है। अच्छा, अब क्या ये वाकया जो मैंने आपके सामने बयान किया, क्या इस शान नुज़ूल को सिर्फ शिया उलमा ने लिखा है? एक सवाल तो है, जवाब यह है कि शिया उलमा ने तो यकीनन लिखा है, मगर क्या बरादरान अहले सुन्नत के उलमा ने भी इसको लिखा है? जी हाँ, बरादरान अहले सुन्नत के भी बड़े मोहतरम उलमा हैं कि जिन्होंने इसको लिखा है, 30 के करीब इसके रेफरेंसेस मिलते हैं, मैं कुछ आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। तफसीर शिफा उस सुदू जनाब अबू बकर नक़ाश मौसली, जनाब इमाम सालबी की तफसीर अलकश वल बयान, अबू याहिया अपनी तफसीर कुर्तुबी के अंदर, इसी तरीके से फ़रायद सिमतैन में हमवीनी ने, इसी तरह दुरर सिमतैन में शेख मोहम्मद जरंदी, सिराज मुनीर में शमसुद्दीन शाफई, किताब सीरे हलबी के अंदर भी, इसी तरह से किताब नूरुल अफसार सैयद मोमिन शबलंजी, और इसी तरह से शरह जाम सगीर सयूती शमसुद्दीन शाफई, इन्होंने भी अपनी किताब के अंदर इस वाक़े को नकल किया। हाकिम हस्कानी ने दुआतुल हुदात में, इब्न जौजी ने तस्किरा में, इब्राहिम यमनी शाफ़ई ने अल इक्तिफा फी फ़ज़्लिल अरबअतिल खुलफ़ा में, ज़रंदी हनफ़ी ने मारिजुल वसूल में और दुररुस सिमतैन में, इसी तरीके से शहाबुद्दीन दौलत आबादी ने हिदायतुस सौदा, समहूदी शाफ़ई ने जवाहिरुल अक़दैन ने, और बहुत सी किताबें जो मोहतरम बरादरान अहले सुन्नत के उलमा हैं उन्होंने इसको नकल किया। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे मोहतरम भाई अहले सुन्नत के जो मेन स्ट्रीम हैं वो आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, फ़ज़ाइल को कबूल करते हैं, मौला अली से प्यार करते हैं, और परवरदिगार आलम से हम यही दुआ मांगते हैं कि खुदावंद मुताल आले मोहम्मद की मोहब्बत पर हमें इस दुनिया से उठाए। ये सफ़ा मुकम्मल हुआ, परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। सूरह मुबारक मआरिज आयत नंबर 5 से आयत नंबर 31, 5 से 31 तक, उन लोगों के मुकाबले पर कि जो क़यामत के मुनकर हैं, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा जा रहा है, फसबर सब्रन जमीला, ए हबीब आप सब्र कीजिए और सब्र जमील कीजिए, यानि अच्छे तरीके से सब्र बर्दाश्त से काम लीजिए। यानी बहुत इरिटेटिंग होता है कि हक बात कही जाए और उसे बार बार सामने से जुटला दिया जाए और बोलने वाले को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए और उस पर मुख्तलिफ तोहमतें लगाई जाएँ, मगर परवरदिगार आलम की तरफ से अपने हबीब को यही हिदायत दी जा रही है जिसका पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर मुजाहरा भी किया। आगे परवरदिगार आलम का कयामत के दिन के हवाले से कमेंट है कि इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, ये लोग उस दिन को बईद देखते हैं, यानी देखते हैं कि जैसे वो बहुत दूर है, ना होने वाली चीज़ है। वह नराहु करीबा, और हम उसे बहुत करीब देखते हैं। जाहिर है कि वो चीज़ जो होने वाली है, जिसका वक़ूअ तयशुदा है, वो ऐसी है कि जैसे कभी भी आ सकती है या गोया आ चुकी है। यानी जिस तरीके से इंसान की मौत है, उसके बारे में यही कहा गया है कि जिनको इस हवाले से कॉशियस होना है, वो उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि जैसे अगली सांस या आखिरी सांस हो सकती है। यानी वो हर लम्हा उसके लिए आमादा और तैयार रहते हैं। इसी तरह से कयामत का मामला है कि कयामत को वो बहुत करीब देखते हैं। परवरदिगार आलम तो ज़ाहिर के ज़माने का खालिक है, लेकिन ये जो मुशरिकीन है, वो चूंकि उसको मानते ही नहीं है, तो उनको लगता है कि ये कौल कौले बईद है और कयामत कभी आने वाली ही नहीं है। आगे परवरदिगार आलम ने कयामत का कुछ मंजर बयान किया है जो वाकई हिला देने वाला है। यौम तकून उस्समा ओ कल मोहले, वो दिन के जब आसमान पिघली हुई धात की तरह से हो जाएगा, यानी आसमान जो है वो कोलैप्स करता हुआ नजर आएगा। तो उसके अंदर तगैयुर, तबद्दुल, उसके अंदर तब्दीली तो आनी है। वो तब्दीली किस तरह की होगी, उसको समझाया जा रहा है कि जिस तरीके से जो धात है उसको पिघला दिया जाए, या चांदी है, सिल्वर है, या कोई भी धात हो, उसको जब वो मोल्टन फॉर्म में आने लगती है, तो जो उसकी पोजिशन होती है, वैसे ही आसमान या हेवनली बॉडीज जो है वो कोलैप्स करने लगेंगी। तो उनके ऊपर ऐसा गुमान होगा कि जैसे पिघली हुई कोई धात है। वह तकून उल जबालो कल एहने, और पहाड़ हो जाएंगे धुनकी हुई ऊन की तरह से। जिस तरह से धुई रुई को जब बार बार पीटा जाता है और उसको आमादा किया जाता है, या ऊन को बार बार इस मरहले से गुजारा जाता है, तो वो उड़ती हुई नजर आती है, उसी तरीके की कैफियत पहाड़ की हो जाएगी। यहाँ तक कि हबा अम मंसूरा की ताबीर भी कुरान मजीद के अंदर आई है कि फिर वो उसकी कैफियत हो जाएगी कि बिल्कुल बेकीमत जो जर्रे होते हैं, वैसा वो पहाड़ हो जाएगा। यानी कभी अगर आप देखेंगे रोशनदान से, जिस तरह के कुछ जर्रे से धूप के मौके पर निकलते हुए नजर आते हैं कि जिनको आप ना पकड़ सकते हैं, ना उसको आप होल्ड कर सकते हैं, उनको कहा जाता है हबा अम मंसूरा, यानी बेहकीकत जर्रे। तो वो जो पहला मरहला है, उसके अंदर वो धुनकी भी ऊन की तरह से हो जाएंगे, और दूसरे मरहले के अंदर या आखिरी मरहले के अंदर बिल्कुल बेहकीकत जर्रे बनकर रह जाएंगे। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, और वो दिन के जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को पूछेगा भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो उसको पहचान नहीं रहा होगा, वो अच्छी तरीके से पहचान रहा होगा। यू बस सरून हम, उनको दिखलाया जाएगा कि यही है तुम्हारे जिगरी यार, मगर वो उनको पहचान नहीं पाएंगे। इस तरह के नफसा नफसी का आलम होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। यवद्दुल मुजरिमो लव यफ्तदी मिन अजाब यौम इज़िन बे बनी है, उस दिन मुजरिम ये चाहेंगे, पसंद करेंगे कि किसी तरीके से फिदिया देकर अपनी जान छुड़ाएं और इस अजाब से अपने आप को बचाएं। और वो फिदिया देने के लिए किस किस को तैयार हो जाएंगे, भी बनी है अपनी औलाद को भी, व साहिबते ही अपनी शरीक हयात को भी, व अखी अपने भाई को भी, व फसीलत हिलती तो भी, और वो कबीला, वो अशीरा, वो उनके रिश्तेदार खानदान के जहां वो पना लिया करता था, वो और वो सबका सब वो फिदिये के तौर पर देने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं, एक मरहला और आगे, व मन फिल अर्द जमी आ सुमयुन जी, जो कुछ ज़मीन में है वो सब वो देने के लिए तैयार हो जाएगा कि इसके बाद ही उसको निजात मिल जाए। मगर क्या उसे निजात मिलेगी? देखिए, एक इंसान दुनिया के अंदर, ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ गलत कर जाता है, और इसी वजह से तो वो मुजरिम करार पाता है। मगर कई मर्तबा वो ये उज़्र पेश करता है कि मैं अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए ये गलत काम करता हूँ, माल हराम कमाता हूँ। मगर कयामत के मैदान की जो मंजर कशी है, वो ये है कि उस अजाब से बचने के लिए इंसान फिदिये के तौर पर अपने घर वालों को, अपनी औलाद को, अपने बेटों को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को, यहाँ तक के जो कुछ भी ज़मीन में है, अगर सब उसकी मिल्कियत में हो, तो वो सब का सब खुदा की राह में फिदिये के उनवान से देने के लिए तैयार हो जाए कि उसके बाद उसे निजात मिल जाए। सुम्मा युनजी है, कल्ला हरगिज नहीं, इन्नहा लज़ा, ये तो एक भड़कता हुआ शोला है, भड़कती हुई आग है। नज़ा अतन लिश्शवा, और ये उधेड़ कर रख देने वाली है इंसान की खाल को। यानी दोनों तर्जुमे इसके बाद मुफसरीन ने ये भी तर्जुमा इसका किया कि झोड़ बंद को जुदा कर देने वाली आग है, और ज्यादातर ने यह तर्जुमा किया कि ये जो खाल इंसान की है उसको उधेड़ कर रख देने वाली है, यानी डिवास्टेटिंग है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, जो नुकसान पहुंचाने वाली है। तद उमन अदबरा व तवल्ला, और ये बुलाएगी अपनी तरफ उसे कि जिसने मुंह फेरा और जिसने पीठ फेराई। यानी जो दुनिया के अंदर न ईमान लाया, ईमान की दावत दी जाती थी, ये मुंह फेर लेता था, इताते रसूल की दावत दी जाती थी, ये पीठ दिखाता था। तो ये वो अफराद हैं कि जिनके लिए गोया इस आग के अंदर एक कशिश रख दी गई है, एक बड़ी मनफी कशिश है ये, जिस तरह से मैग्नेट होता है वो लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी तरीके से इस आग के अंदर एक कशिश है कि जो ऐसे अफराद को खुद अपनी तरफ जज्ब कर लेगी। यानी ये कंट्रोल्ड आग है कि जिसको पता है कि किसको अपनी तरफ खींचना है, ये मुजरिमों को अपनी तरफ खींचेगी। और ये मुजरिम कि जो रू गर्दानी करते थे, मुंह फेर लेते थे, इनकी दो सिफतें परवरदिगार आलम ने खास तौर पर यहां पर बयान की हैं। वह जमा फऔआ, ये जमा करते थे माल को और फिर उसको महफूज रखते थे। यानी इनका कुल हम गम ये था कि किसी तरीके से इनका माल बढ़ता चला जाए, इनका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, ये बस अपने डिपॉजिट्स के अंदर इजाफा करते चले जाए। काश कि इन्होंने ये सारी चीजें कयामत के लिए जमा करवाई होती तो बहुत अच्छा होता, मगर उसके लिए तो सदका देना पड़ता है, उसके लिए तो बहरहाल अपनी जेब का वजन कम करना पड़ता है, उसके लिए तो जक़ात और खुम्स निकालना पड़ता है। लेकिन नहीं, ये अफराद सिर्फ अपने माल को अपनी आंखों के सामने बढ़ता हुआ देखकर खुश होते थे और उसको मुख्तलिफ महफूज जगहों के ऊपर रख दिया करते थे। आज के ज़माने में कहा जाएगा कि बैंक अकाउंट्स अपने बढ़ाने की इन्हें फिक्र थी और बस। इन्नल इंसान खुलका हलुआ, अब परवरदिगार आलम का एक कमेंट है, तबसरा है, ये तो कयामत की मंजरकशी थी, अब परवरदिगार आलम की तरफ से एक तबसरा आ रहा है कि इन्नल इंसान खुलका हलुआ, इंसान पैदा ही इस तरह से किया गया है कि वो हलुआ है, छोटे दिल वाला है, यानी बुखल की तरफ तरफ माइल होता है। मगर क्या ये बुखल की तरफ माइल होना इसको मजबूर कर दिया गया है कि वो ऐसा ही रहेगा? यही तो उसका इम्तिहान था। अल्हमा फजूरहा व तकवा, कि उसके अंदर इसको फजूर भी रखा गया है, तकवा भी रखा गया है। यहाँ पर जो बताई जा रही है सिफत वो नेगेटिव है, मगर उसी के खिलाफ तो उसे जिहाद करना है। यही तो तस्किया नफ्स है कि जिसके जरिए से उसे अपने आप को प्योरीफाई करना था, मगर उसकी कैफियत यही है कि अगर माल मिल जाए तो बेदिल छोटा हो जाता है, खर्च करने का हौसला नहीं होता। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब उसे कोई मुसीबत कोई परेशानी छू जाती है तो बेकरार हो जाता है, जज़ुआ हाय वाय करने लगता है। वाइज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब इसे दौलत ज़रा से भी मिल जाए तो फिर मनुआ वो बुखल करने लगता है, उसके ऊपर पहरे बिठा देता है। हाँ इल्लल मुसल्लीन, अब वो जो तज़किया नफ्स के ज़रिए से अपने आप को प्योरीफाई करते हैं उनकी सिफात शुरू होती हैं। और ये तकरीबन 9 से 10 सिफात हैं कि जो परवरदिगार आलम ने बयान की। हाँ मगर वो जो नमाज पढ़ने वाले हैं, ये नमाज पढ़ने वाले यानी अब इन्हें खौफ खुदा आ गया, अब ये मुसल्ले पर आ गए, इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को खुदा के महजर में समझते हैं, खुदा के सामने हाजिर व नाजिर समझते हैं कि ये खुदा जो है वो हमें देख रहा है। तो फिर वो अपने आप को उसी तरीके से मोल्ड करते जाते हैं कि फिर खुदा के सामने जब ये हाजिरी दे रहे हैं, यानी खुदा के सामने हिसाब किताब के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो क़यामत से पहले हिसाब किताब के लिए तैयार हो गए, तो अब ये अपने आप को करेक्ट करेंगे। ये नमाज पढ़ने वाले सिर्फ नुमाइशी नमाज पढ़ने वाले नहीं हैं। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, ये वो हैं कि जो अपनी नमाज में दवाम लेकर आते हैं, नागा नहीं करते, यानी ये नमाज के अंदर एक कंसिस्टेंसी रखते हैं, ऐसा नहीं कि आज पढ़ी और कल नहीं पढ़ी, ना। इनके लिए नमाज का छूट जाना या नमाज का कजा हो जाना ये बहुत बड़ी मुसीबत है, यानी उनका दिन पूरा बेचैनी में गुजरे अगर कभी उनकी फजर की नमाज कजा हो जाए या कोई और नमाज उनसे छूट जाए, तो ये जानबूझकर तो नमाज छोड़ने सवाल ही पैदा नहीं होता। परवरदिगार आलम फरमाता है हुम अला सलातिहिम दाइमून, ये दवाम के साथ, परपेचुअलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ नमाज पढ़ते हैं। वल्लज़ीना फी अमवालिहिम हक्कुम मालूम, और वो कि जिनके माल के अंदर हक़ मालूम है, यानी ये एक मुअय्यन हक रखते हैं, जो ज़कात खुम्स वगैरह जब वाजिब हो गया तो फिर तो वो उसकी पायदारी उसकी भी पासदारी करते हैं, मगर इवन इस एहतमाल के साथ कि चूंकि बहुत सारी सूरे जो हैं वो मक्की सूरे हैं कि जिसके अंदर अभी ज़कात की वजूब का हुक्म नहीं आया था, तो वो अपने तौर पर भी इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि जो माल हमें मिला है उसमें एक हिस्सा जो है उनका भी है कि जो गरीब हैं, लिस्साइले वल महरूम, वो जो सवाल करने वाले हैं और वो जो महरूम हैं। ज़ाहिर है कि हम जानते हैं कि एक तो प्रोफेशनल बैगर्स वाला मामला है, उसको तो आप हटा दीजिए कि जो हट्टे कट्टे होकर भी मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन एक वो कि जो वाकईन मुस्तहक है, मगर ये मुस्तहक की भी दो किस्में हैं, एक वो जो हाथ फैला लेते हैं और एक वो है कि जो हाथ नहीं फैलाते, वाइट कॉलर होते हैं, सफ़ेद पोश होते हैं, अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना चाहते हैं। तो ये अफराद कभी अपने उस पोजीशन को दूसरों के सामने एक्सपोज नहीं करते, उन्हें परवरदिगार आलम कहता है कि लिस्साइले वल महरूम, सवाल करने वालों के लिए भी और महरूम के लिए भी, यानी मुस्तहक हो फिर सवाल करने वाला हो तो उसको भी ये देते हैं और जो महरूम है उसको भी देते हैं। वल्लज़ीना युसद्दिकूना बियौमिद्दीन, और ये वो हैं कि जो कयामत के दिन की तस्दीक करने वाले हैं, कयामत के दिन की गवाही देने वाले हैं, कयामत के दिन के ऊपर इनका ईमान होता है। वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाब रब्बिहिम मुशफिकून, और ये वो हैं कि जो اپنے رب کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مأمون, یقیناً ان کے رب کا عذاب جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہوا جا سکتا. یہ کوشش رہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, کہ بہرحال ہم کچھ بھی کر لیں وہ کہاں سے عمل لے کر آئیں کہ جو خدا کے معیار کے مطابق. ہاں بہرحال یہ اس کی ربوبیت ہے, پروردگار عالم اگر ہمیں معاف کر دے, ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر لے, اور جو تھوڑی بہت ہم نے کوشش کی اسے قبول کر لے اور اپنی طرف سے اس میں اور اضافہ کر دیں, یہ ان کی گویا مناجات ہوتی ہے. تو وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے, اور یہی مستقل چیک ان کے اوپر رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کنٹینیوسلی امپروو کرتے رہتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, اور یہ وہ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, یعنی بدکار اور بدکردار نہیں ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, ایڈلٹری کی طرف, زنا کی طرف نہیں جاتے, عریانی کی طرف نہیں جاتے. یعنی اس میں مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی, ایک تو وہی کہ زنا کی طرف نہیں جاتے, عریانی کی طرف نہیں جاتے, یعنی جتنا حجاب خدا نے مانگا ہے اس کا وہ خیال رکھتے ہیں. اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, ہاں ایک چیز جو اس کے اندر استثناء کی گئی ہے, دو چیزیں, ایک تو ان کی ازواج کہ وہ تو ان کے لیگل شریک حیات ہے, اسپاؤز ہے, تو ان کے ساتھ جو روابط ہیں, تعلقات ہیں, یہ تو بالکل جائز ہیں بلکہ اپریشیٹڈ ہے, یہ ان کا حق بھی ہے اور یہ درست طریقہ ہے. اور اسی طریقے سے ما ملکت ایمانہم, جو ان کے کنیزیں ہیں, یعنی جو ان کی ملکیت کے اندر ہے, اس کا جو لافل طریقہ ہے اس کے مطابق. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, تو اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے, نہ ان کو کنڈیم کیا جائے گا, بلکہ یہ تو بالکل اچھی چیز ہے, یہ تو ہونا چاہیے. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, ہاں جو اس کے آگے پھر چلا جائے, اس سے بیونڈ, یعنی اس لائن کو کراس کر لے, یہ ریڈ لائن ہے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, تو وہ پھر ستمگار ہے, پھر وہ ٹرانسگریسر ہے. یہ آیت نمبر 31 کے جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہو گیا, لیکن آگے اگر آپ دیکھیں تو مزید چند صفات باقی ہیں. اس میں امانتوں کا ذکر ہے, وعدے کی پاسداری کا ذکر ہے, اور وہ جو گواہیاں ان کو دینی چاہیے ان گواہیوں کا ذکر ہے, اور پھر نماز کی حفاظت کا تذکرہ ہے. پھر ان کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ یہ جنت کے اندر ہوں گے اور جنت میں عزت کے ساتھ ہوں گے. تو بہرحال یہاں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.